ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार द्वारा गन्ने की न्यूनतम खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 620 रुपए निर्धारित, प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग करने की भारत की प्रतिबद्धता और इंडोनेशिया के जकार्ता स्थित टेरा ड्रोन कंपनी के कार्यालय में आग लगने से कम 18 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने गन्ने का न्यूनतम खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 620 रुपए निर्धारित किया है। कल सिंह दरबार में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संचार मंत्री जगदीश खरेल ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि साल 2082-83 के लिए किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने का न्यूनतम खरीद मूल्य 620 रुपए क्विंटल और अनुदान रकम प्रति क्विंटल 70 रुपए मुहैया कराने का निर्णय सरकार ने किया है। इसके अलावा जेनजेड आंदोलन में घायल और अपांग हुए लोगों को राहत मुहैया कराने संबंधी कार्यविधि 2082 को स्वीकृत करने, नेपाल और मॉरिशस के बीच संपन्न दोहरे कर से मुक्ति एवं वित्तीय छल निरोध संबंधी समझौता समाप्त करने लगातार निर्णय भी मंत्रिपरिषद बैठक ने किए हैं। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ चुनावी सरकार ही नहीं बल्कि सुशासन के लिए तेजी से काम करने वाली सरकार है। भ्रष्टाचार विरुद्ध 22वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कार्की ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सुशासन की मांग के साथ हुए जेनजेड आंदोलन की नींव पर खड़ी मौजूदा सरकार नियमित कामों के साथ साथ सुशासन के लिए तीव्र गति में काम कर रही है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से जेनजेड आंदोलन के अगुवा सुधन गुरुंग ने भेंट की है। आज प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार में हुई भेंट में गुरुंग ने सरकार और जेनजेड के बीच होने वाले समझौते की प्रगति संबंध में जिज्ञासा रखी थी। उनका कहना था कि जेनजेड आंदोलन को वैधता देने के हिसाब से समझौते की प्रक्रिया को जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने और राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर करने लगातार काम होने चाहिए। साथ ही आंदोलन में शामिल भर होने को लेकर बहुत से युवाओं को पुलिस द्वारा की जा रही धरपकड़ और जमानत की रकम न होने के कारण उन्हें हिरासत में रखे जा रहे हैं, जैसे विषय पर गुरुंग ने असंतुष्टि जताई थी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क को पुनर्जीवित करने और इसे गतिशील, समावेशी तथा कार्यकुशल बनाने का नया संकल्प आवश्यक है। सार्क के 41वें चार्टर दिवस के अवसर पर परराष्ट्र मंत्री का दायित्व भी संभाल रही प्रधानमंत्री कार्की ने सदस्य राष्ट्रों की सरकारों और जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें साझा उद्देश्यों पर एकजुट होकर इस क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करना, सामूहिक हितों की रक्षा करना और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि पिछले वर्षों में सार्क ने आपसी समझ बढ़ाने, पारस्परिक विश्वास मजबूत करने और इस क्षेत्र के जीवन स्तर को सुधारने के लक्ष्य सहित महत्वपूर्ण पहलों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में सफलता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से भारत के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मोनो महावर ने शिष्टाचार मुलाकात की है। सिंह दरबार में आज हुई इस मुलाकात में दोनों के बीच द्विपक्षीय आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी। आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में पड़ोसी देश भारत ने सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल से भारतीय विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मोनू महावर ने आज शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने चुनाव के लिए आवश्यक संसाधन और सुरक्षा बंदोबस्ती की सामग्री का सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारतीय विदेश मंत्रालय के उत्तर मामला की रेखदेख करने वाले अतिरिक्त सचिव मोनू नेपाल दौरे के क्रम में रविवार काठमांडू आई थी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने भारत के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मोनू महावर ने शिष्टाचार भेंट की है। सिंह दरबार स्थित मंत्रालय में हुई मुलाकात में उनके बीच नेपाल और भारत के बीच संबंध, द्विपक्षीय सहकार्य, वर्तमान स्थिति तथा नेपाल की वर्तमान सरकार की प्राथमिकता के विषय पर विचार विमर्श हुआ था। मंत्री खरेल ने कहा कि निर्धारित तिथि पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने, भ्रष्टाचार नियंत्रण करने तथा सुशासन कायम करने के विषय को प्राथमिकता में रखकर सरकार काम कर रही है। मुलाकात में अतिरिक्त सचिव महावर ने जानकारी दी कि नेपाल में भारत सरकार निरंतर सहयोग करती आई है तथा भारत सरकार नेपाल द्वारा तय किए गए प्राथमिकता के क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात शहरी विकास मंत्री कुलमान घी सिंह ने कहा है कि विकास निर्माण से संबंधित ठेका प्रणाली का उचित प्रबंधन न होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर असर पड़ा है। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज द्वारा आज ललितपुर में आयोजित रुग्ण ठेका प्रबंधन से संबंधित सरोकार वालों के संवाद को संबोधित करते हुए मंत्री घी सिंह ने कहा कि सरकारी ठेका लेकर समय पर काम न करने से देश और जनता को ही नुकसान पहुंचता है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दै छ?
सबै राम्रै चल्दै छ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने सिंहदरबार से अपनी सेवाएं प्रारंभ कर दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ प्रकाश बुढ़ाथोकी ने आज से आंशिक रूप से सिंहदरबार से सेवा प्रवाह शुरू होने की जानकारी दी। सिंहदरबार स्थित नेपाली सेना के नर्सिंग दल की खाली जगह पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंत्रालय के लिए 6 प्री फैब ब्लॉक बना कर दिए हैं। बीते भाद्र 23 और 24 को जेंजेड आंदोलन के कारण रामशाहपथ स्थित मंत्रालय में आगजनी होने के बाद स्थायी रूप से नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद के कार्यालय से मंत्रालय सेवाएं दे रहा था। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने सरकार के साथ नए समझौते की मांग की है। आज काठमांडू में राप्रपा द्वारा आयोजित प्रदर्शनी एवं सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित चुनाव से पहले ही नई समझौता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राजशाही राजनीतिक दल और जेएनजी के बीच नई समझौते की पहल प्रधानमंत्री सुशीला कार्की द्वारा ली जानी चाहिए और इन तीन पक्षों के बीच समझौते से ही आगे बढ़ा जाना चाहिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के 11वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों का अद्यावधिक कार्य अंतिम चरण में पहुंचा है। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय चासल में संगठन विभाग के प्रमुख काशीनाथ अधिकारी और सचिव माधव ढुंगेल सहित समिति ने प्रतिनिधि विवरण अद्यावधिक किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित एक कंपनी के कार्यालय में आग लगने से कम 18 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। ये घटना जकार्ता के दक्षिणी इलाके में स्थित टेरा ड्रोन कंपनी के कार्यालय में हुई। आग जकार्ता के दक्षिण में स्थित टेरा ड्रोन कंपनी के एक मंजिला कार्यालय में लगी। इमारत मुख्य रूप से एयर कंडीशनर उपकरणों के भंडारण और मरम्मत के लिए उपयोग की जाती थी। प्रारंभिक जांच के अनुसार आग विद्युत शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई हो सकती है। हालांकि अधिकारी अभी भी सटीक कारण की पुष्टि कर रहे हैं। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और त्वरित राहत व बचाव कार्य का निर्देश दिया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार द्वारा गन्ने की न्यूनतम खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 620 रूपये निर्धारित, प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग करने की भारत की प्रतिबद्धता और इंडोनेशिया के जकार्ता स्थित टेरा ड्रोन कंपनी के कार्यालय में आग लगने से कम 18 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।